ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंध का दसवां अध्याय श्लोक संख्या 9 पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है भक्त शिरोमणि प्रहलाद। कृपा कर मेरे पीछे आप लोग दोहराइए। विमुंचति यदा कामान् मानवो मनसिस्थितान् तरेव पुनरिकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। विमुंचति छोड़ देता है यदा जब भी कामान समस्त भौतिक इच्छाओं को मानवः मानव समाज मनसि मन के भीतर स्थितान स्थित तरहि तभी एव निस्संदेह पुंडरीक अक्ष हे कमल नयन भगवान भगवत्वाय भगवान के समान ही ऐश्वर्य होने का कल्पते पात्र बनता है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे प्रभु, जब मनुष्य अपने मन से सारी भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है तो वह आपके ही समान संपत्ति तथा ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। तात्पर्य, कभी कभी नास्तिक लोग भक्त की आलोचना यह कहकर करते हैं, यदि तुम भगवान से वरदान लेना नहीं चाहते और यदि भगवान का सेवक भगवान के ही समान ऐश्वर्यवान है तो फिर तुम भगवान के सेवक बने रहने का वरदान क्यों मांगते हो। श्रीधर स्वामी की टीका है, भगवत्वाय भगवत समान ऐश्वर्याय। भगवान अर्थात भगवत्व अर्थात भगवान के ही समान होने का अर्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से तादात्म्य या उनके समान होना नहीं है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में सेवक स्वामी के समान ही ऐश्वर्यवान होता है, भगवान का सेवक दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में भगवान की सेवा में लगा रहता है और ये सभी भगवान के ही समान ऐश्वर्य होते हैं और ये सभी भगवान के ही समान ऐश्वर्यवान होते हैं। यही अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। सेवक तथा स्वामी भिन्न होते हुए भी ऐश्वर्य में समान हैं। परमेश्वर से एक साथ भिन्नता तथा एकत्व का यही अर्थ है। विमुंचते यदा कामान मानव मनसि स्थितान तर्हेव पुनरिकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। तो यह प्रहलाद महाराज की उक्ति है, कथानक भाग से आप परिचित हैं। भगवान नृसिंह देव प्रकट हुए और प्रकट होने के तुरंत बाद ही भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और हिरण्यकशिपु के वध करने के बाद प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंह देव की स्तुति की है। बढ़िया से स्तुति श्रीमद् भागवतम के अन्यतम प्रसिद्ध स्तुतियों में से एक स्तुति है, प्रहलाद महाराज ने किया। उस स्तुति को सुनने के बाद पहले भी प्रहलाद महाराज की भक्ति से और पुनः तात्कालिक रूप से जब प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा है कि प्रहलाद, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोत्तमम। भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि प्रहलाद, मैं तुमसे प्रीतः अहम अस्मि, मैं अत्यधिक तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमसे खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। इसलिए वरम विणिश्व, भगवान नरसिंह देव ने कहा कि वरम विणिश्व, तुम मुझसे वरदान मांगो। अभिमतम, जो तुम्हारी इच्छा है वह, चूंकि मैं तुम पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, संतुष्ट हूँ तुम्हारी भक्ति से, इसलिए वरम विणिश्व, तुम मुझसे वरदान मांगो। अभिमतम, तुम्हारी जो इच्छा हो, तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं काम पूरो अहम अस्मि, मेरा ऐसा स्वभाव है मेरा ऐसा नेचर है कि मैं अपने शरणागत भक्तों का संपूर्ण कामनाओं को पूरा करता हूँ। काम पूरो अस्मि अहम्। भगवान अपने विषय में, नरसिंह देव अपने विषय में कहते कि मैं अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ, कामनाओं को पूरा कर देता हूँ। और इसके बाद भगवान और भी बातें कहता है, लेकिन जो मैं जिस पर किसी पर प्रसन्न हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ, तो उस व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दृष्टवा मम, वह संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं। इसलिए सर्व संपत्ति मैं सब वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं, मुझसे तुम वरदान मांग लो। और वरदान के विषय में भगवान अभिमत, जो तुम्हें अभीष्ट हो, जो तुम्हारी इच्छा है। जब भगवान नृसिंहदेव एक तरह से प्रलोभन दे रहे थे प्रहलाद महाराज को कुछ मांगने के लिए, एवं प्रलोभ्यमानोपि वरह लोक प्रलोभित प्रलोभन, स्वयं भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज से आग्रह कर रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे, शायद इनकरेज कर रहे थे कि तू हमसे वरदान मांगो, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कुछ वरदान नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? एकांतित्वात, एकांतिक भक्त थे भगवान के। भगवान के एकांतिक भक्तों का एक सौभाग्य स्वभाव होता है कि भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। तो चूंकि प्रहलाद महाराज भगवान के एकांतिक भक्त थे, तो भगवान के प्रलोभन देने के बाद भी प्रहलाद महाराज ने वरदान नहीं मांगा। तो प्रहलाद महाराज वरदान नहीं मांगे, भगवान नृसिंहदेव कह रहे थे कि हमसे तुम अभीष्ट वरदान ले लो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर दूंगा। तो प्रहलाद महाराज वरदान नहीं मांगे। क्या कारण था कि जब भगवान दे रहे हैं, किसी को प्रसन्न होकर खुश होकर देना चाहते हैं, भगवान की इच्छा है कुछ देने का, तो प्रहलाद महाराज ने क्यों नहीं वरदान मांगा? क्या कारण था? भगवान दे रहे हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, देना ही चाहते हैं, तो लेने में क्या आपत्ति थी प्रहलाद महाराज को? भक्ति योगस्य तत् सर्वम् अंतरायम्। अंतराया, अंतराय जो लिस्ट, जो वरदान भौतिक को भी होता है, वरदान होता है, तो भक्ति योग के तत् सर्वम् अंतराय, अंतराय मतलब ऑब्स्टेकल। भक्ति योग के प्रोग्रेस में कोई करता है तो ये जो वरदान होते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं होती है, उसमें अंतराय होते हैं, उसको रोकते हैं, बाधा देते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्यों वरदान नहीं लिए? उस देख रहे थे कि जो कुछ भगवान दे रहे हैं, इसे वरदान से हमारी भक्ति योग में अंतराय, बाधा, कठिनाई उत्पन्न होगी। भक्ति योग के जो प्रोग्रेस है उसमें यह बाधा दे सकता है। मन्यमाना हृषिकेशम स्वयं उवाच। प्रहलाद महाराज की ऐसी धारणा थी कि जो जितने भौतिक भोग है, यह भक्ति के प्रगति में बाधक होते हैं। भगवान भगवत गीता में एक जगह भौतिक सुखों की बात कहते हैं। भौतिक सुख का एक स्वभाव यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सूरमते बुधत। संसार का जितना भी भोग है, सुख है, सुविधा है, विषय है, ये संस्पर्शज हैं। हमारी इंद्रियां जब इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आती हैं तब हम लोग एक विशेष प्रकार के अनुकूल अथवा सुख की अनुभूति करते हैं तो उसको भोग कहा जाता है, विषय कहा जाता है। हमारे इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द है, उसे हमारे इंद्रियां विषयों से टकराती हैं तो हम एक विभिन्न एक विशेष प्रकार के सुख की अनुभूति करते हैं, तो ये संस्पर्शज भोग है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं लेकिन भोगों का एक स्वभाव है दुख यो नयह योते, ये जितने विषय हैं भोग हैं दुख के योनि हैं। जो विषय है अपने आप में कालांतर में एक समय बदलने के बाद सुख ही दुख में परिवर्तित हो जाता है। जो तथा कथित आज हमारे लगता है कि यह सुख है, वह काल क्रम से वह सुख ही दुख रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त वो विषय तो दुख बन ही जाता है। भगवान कहते हैं विषय कैसे हैं, दुख योनय, दुख के सोर्स हैं, वहां से और भी दुख निकलने लगते हैं, दुख का जन्म दे देते हैं। इसीलिए और इनका स्वभाव होता है आद्यंत वंत, कोई भी दुनिया का सुख है इसका एक दिन प्रारंभ होता है और अवश्य ही इसका एक दिन अंत भी हो जाता है। कोई भी दुनिया के भौतिक सुख परमानेंट किसी जीव के साथ नहीं रहता है, बदलता रहता है। हिंदी के कवि ने कहा, चार दिन की चांदनी पुनः अंधेरी रात। ऐसा नहीं चंद्रमा है चांदनी है तो रोज रोज रहने वाला है, बस एक दो दिन के बाद चालू हो जाता है। तो हमारे जो सुख हैं भौतिक सुविधाएं हैं यह इसका एक दिन प्रारंभ होता है और अवश्य अवश्य एक दिन ये छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए जो विद्वान व्यक्ति है बुद्धिमान व्यक्ति है वह इन सुखों के प्रति आकर्षित नहीं होता है। तो प्रहलाद महाराज यद्यपि कि नरसिंह देव प्रलोभन दे रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि आप वरदान हमसे मांग लो, लेकिन वो एकांतिक भक्त थे इसलिए उन्होंने नहीं मांगा। इसलिए कि ये जो भी भौतिक सुख है सुविधाएं हैं भोग हैं ये भक्ति में अंतराय हैं। फिर एक सामान्य स्थिति पर प्रहलाद महाराज एक बहुत बड़ी बात भगवान से कह दिए कि भगवान मैं आपकी सेवा में आपकी भक्ति में लगा हूँ, आपका भक्त हूँ, तो यह इसमें भक्ति करने में मेरी कोई भौतिक कामना नहीं है, यानी कि मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ भक्ति कर रहा हूँ जप कर रहा हूँ और बदले में मैं आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करता हूँ, नहीं रखना। और इसके साथ साथ प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो भी भक्त है भगवान की सेवा करता है भगवान का भजन करता है और भक्ति के बदले में कुछ भगवान से चाहता है, भक्ति करते हैं हम भगवान का सेवा करते हैं पूजा करते हैं प्रार्थना करते हैं जप करते हैं, लेकिन हमारी आकांक्षा होती है कि भगवान हमारी इस इच्छा की पूर्ति कर दीजिए, मैं अभाव में हूँ। तो उस व्यक्ति को भजन में लगे हुए उस व्यक्ति को प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि न स भृत्य, वह सेवक नहीं हो भक्त नहीं है, भक्ति करता है लेकिन भगवान से बदले में सेवा के बदले में भक्ति के बदले में कुछ चाहता है। तो उसे स न स भृत्य उसको भक्त नहीं कहा जा सकता है, वो भक्त नहीं कहा एक बड़ा खराब शब्द प्रहलाद महाराज स्ट्रॉन्ग शब्द सवय बणिक, बणिक समझते हैं ना, ये बढ़िया ब्राह्मण तो बड़ा अच्छा शब्द है, किसको ब्राह्मण कहा जाता है क्षत्रिय कहा जाता है तो वह भी अच्छा लगता है, किसको तुम बनिया कह दीजिए, लेन देन बड़ा तौल कर कुछ देते हैं तो दूसरे पड़े पर कुछ रखते हैं, ठीक पहले अनाज से विनिमय होता था वस्तुओं का। तराजू पर एक तरफ कुछ रखते थे, ठीक उसी तौल कर दूसरे को उतना ही दिया जाता। तो यह जो व्यापार करता है, यह करता है विनिमय करता है भगवान के साथ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यस्त आशीष आशास्ते, जो भगवान से सेवा के बदले भक्ति के बदले में कोई चाहता है वो भक्त नहीं है, वो सवय बणिक, वह बनिया है। ये मतलब बड़ा खराब शब्द है, मतलब कि संस्कृत अच्छा है, बणिक शब्द कहते हैं कि मतलब किसी को यह कह देना है कि उसके छोटी बुद्धि है, कुछ लेन देन में बड़ा हिसाब किताब रखता है, उतना ही देना। और इसी क्रम में भगवान से प्रहलाद महाराज ने शिकायत भी कर दिया। और जो स्वामी भी है, किसी अपने सेवा का परिपालन पोषण, अपने भक्त का सेवा कर, भक्त को कुछ देता है, इसलिए देता है कि इसने हमारे लिए कुछ किया है, तो वह स्वामी भी बहुत अच्छा स्वामी नहीं है। क्या भजन किया है तब कुछ दे, कुछ हमारी सेवा करता है तब देता है। फिर भी भगवान कह रहे थे कि प्रहलाद ठीक है, तुमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करो ना मेरी संतुष्टि के लिए, मैं चाहता हूं तुमको कुछ देना, इसलिए मुझको संतुष्ट करने के लिए, मेरी इच्छा का पालन करने के लिए कुछ तुम ले लो। तुमको इच्छा नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं, हमसे कुछ ले लेने में क्या आपत्ति है। तो प्रहलाद महाराज के ठीक है, आप ईश्वर हैं, भगवान हैं हमारे साथ, आप देना चाहते हैं तो मैं नहीं तो नहीं कह सकता हूं, जरूर कुछ से मांग। यदि दास्यसी में कामान बरान, यदि भगवान चाहते हैं कि मेरा अभिष्ट वरदान आप देना चाहते हैं, मेरी जो इच्छा है अभिमत मुझको है, जो हमें चाहिए उसे देना चाहते हैं, तो मैं अवश्य आपसे मांगूंगा और मांग रहा हूं। कामान हृदय असमरोहम भवतस्तु बिणे परम, तब आप देना चाहते हैं तो हम एक ऐसा वरदान दीजिए कि वरदान के प्रति मांगने की इच्छा का उदय मेरे हृदय में न हो। मांगने इच्छा होता है ना, मन में आता है कि हमको कुछ चाहिए, तो किसी प्रकार की कामना ही मेरे हृदय में न हो, उत्पन्न ही न हो, अंकुरित न हो। कामना का यदि बीज है तो उसमें कभी अंकुरित न हो। कामन हृदय असंरोहम, असन अनुत्पत्ति, समरोह मतलब उत्पन्न होना, असमरोह मतलब कि मेरे मन में किसी प्रकार के मांगने की इच्छा का ही उदय न हो। यदि आप देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए, यह वरदान। मांगने की इच्छा, मांगने का जो संकल्प होता है वह हमारे हृदय में यदि भगवान कहीं है तो उस संकल्प को नष्ट कर दीजिए। यही मैं आपसे वरदान मांगता हूं। प्रहलाद महाराज यह क्यों कहते हैं कि विषयों के प्रति जो आकर्षण है, इच्छा है, वह उसको प्रहलाद महाराज उसका उत्पन्न ही ना हो। तो भौतिक इच्छाएं हैं, भोग है, विषय है, इसमें दोष क्या है, क्या कारण है कि आप नहीं लेना चाहते हैं, आप क्या कारण है कि आप चाहते हैं कि आपके हृदय में विषयों के प्रति, भोगों के प्रति कामना ही, इच्छा ही न उत्पन्न हो, इसमें क्या दोष है। कामना का अंकुरण ही हृदय में, यदि किसी के हृदय हो, कामना उत्पत्ति में क्या दोष है। यदि कोई भक्त भोगों में लगा रहता है तो उसमें क्या दिक्कत है, बढ़िया से भजन भी करते हैं, बढ़िया से खाते पीते हैं, भोगों में लगे हैं तो ठीक, दोनों ही ठीक है, क्या दिक्कत है कि यदि कामना किसी के हृदय में। प्रहलाद महाराज बहुत स्ट्रांगली एक बात कहते हैं कि यदि किसी के हृदय में भोगों के प्रति कामना उत्पन्न होती है, इमीडिएटली इंद्रियाणि मनः प्राणः आत्मा धर्मो धृति मति हृ स्त्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। बहुत लंबा लिस्ट। यदि किसी के हृदय में कामना का उदय होता है, जन्मना, केवल जन्म ले लिया, हमारी इच्छा हो गई कि हमको यह भोग चाहिए, तो उसकी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। संपूर्ण इंद्रिया नष्ट होने का असतपथ में लग जाती हैं, कुमार्ग में लग जाती हैं, असतपथ में जाने लगी। इंद्रियाणि मन, मन मन उचित अनुचित दिशा में जाने लगता है, नष्ट हो जाता है। प्राण जो हमारे जीवनी शक्ति है, आत्मा मतलब शरीर, ये सब कुपथ में खराब रास्ते पर चले जाते हैं। धर्म, धर्म भी नष्ट हो जाता है। जो ही हमारे हृदय में भोगों के प्रति कामना होती है, वर्णाश्रम धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, अथवा भगवत आराधना रूप जो धर्म है, कर्तव्य है, वो नष्ट हो जाता है, उसके प्रति अरुचि हो जाती है। हृ धृति धैर्य नष्ट हो जाता है, द्वंद्व को सहने की जो क्षमता होती है वो द्वंद्व धृति भी नष्ट हो जाता है। और मति हमारा जो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका विवेक हमको नहीं रहता है। ये भोगों का स्वभाव है। प्रहलाद महाराज भोगों को क्यों नहीं ले रहे हैं, तो भोगों के प्रति आकर्षण होने में भी विषयों लगने में क्या दिक्कत होती है, एक तुरंत ही वो नष्ट होते हैं। इंद्रियाणि मन, इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, कुपथ में जाने लगती हैं। मन विषयों में धावित होता है, भगवान की भक्ति छोड़कर उसमें विषयों के ऊपर आकर्षित हो जाए, भोगों में लगने लगता है। प्राण जीवनी शक्ति का दुरुपयोग हम लोग करने लगते हैं। शरीर का भी जो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए तो सब गलत पापों में लगने लगता है। और विशेषकर हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। भगवद आराधना मूलक जो धर्म है, भगवान की आराधना करना चाहिए, जी उसे विचलित हुआ जो भोगों आते हैं तो। और कहते हैं हरि, हरि का अर्थ होता है एक लज्जा, एक गुण माना जाता है। हरि उस वैदिक ग्रंथों में उस बात को, यदि कोई अनुचित कार्य होता है, हमसे हो जाता है अथवा हो रहा है, तो हमको एक अच्छे व्यक्ति को उससे लज्जा आती है, उसको हरि कहते हैं। हमसे कोई अनुचित काम हो गया है अथवा हो रहा है, तो उसको याद करके हमारे हृदय में जो लज्जा होती है उसको हरि कहते हैं। तो जिसके मन में भोग उत्पन्न हो जाता है, मन में भोगों के प्रति आकर्ष होता है, उसको कुछ भी लज्जा नहीं, कुछ भी दुष्कर्म करने में कुछ हिचकिचाहट नहीं होती, बड़ा प्रसन्नता से करता है। स्त्री और उसका भोगों के प्रसिद्ध सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य अथवा उसका ऐश्वर्य, उसका धन भी नष्ट हो जाता है। जो सद्गुण होते हैं, ऐश्वर्य होता है, सौभाग्य व्यक्तित्व होता है पर्सनालिटी में, वो भी तेज, तेज नष्ट हो जाता है भोगों के प्रति। तेज का अर्थ है, तेज उसको कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है तो हमेशा किसी न किसी की अपेक्षा करता रहता है कि वो हम सहायता करेगा, तभी मैं करता, अनपेक्ष नहीं हो पाता है, हमेशा किसी के पीछे लगे रहता है, किसी की छाया में पला पलता पुछता है, उसमें साहस नहीं होता है कि प्रचार करने का। जैसे तेज का अर्थ है, जैसे बहुत लोग भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, लेकिन उनमें भरोसा नहीं होता है कि हम बाहर जाएंगे तो हमारा प्रचार सफल ही होगा, डर लगता है कि अरे हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, हमेशा अपेक्षा रहती है। संस्था में रहते हैं तो अंदर अंदर बाउंड्री के अंदर तो खूब बढ़िया से, लेकिन इतना उसमें प्रभाव तेज ऐश्वर्य नहीं होते कि बाहर जाएं और प्रभुपाद जी गौड़ी मठ छोड़कर निकल गए, अकेले निकल गए, इसको तेज कहते हैं। कुछ पैसा नहीं हो लेकिन एकदम इतना प्रभाव है कि चले गए, सफल भी हो। तो भोगों के प्रति तेज भी नरते हैं। स्मृति स्मरण शक्ति भी नहीं उचित काम करती है, क्या हमको करना चाहिए था, क्या करना चाहिए, वो स्मरण ही नहीं रहता है। और एक नष्ट होता है कि सत्य नष्ट होता है, सत्य का अर्थ होता है, आपको सत्य को जानते हैं, सत्य वाणी, सत्य वो नहीं बोल सकता, भोगों के प्रति आकर्षण आकर्षण होता है तो सत्य बोलना मुश्किल हो जाता है, यथार्थ भाषण जिसे कहते हैं, यदि भोगों के प्रति आकर्षण विषय में लगे हैं तो यथार्थ भाषण सत्य भाषण नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सत्य का अर्थ होता है कि जो उचित अवस्था में हम लोगों के प्रति दूसरे जीवों का हित करने की जो इच्छा होती है वो नष्ट हो जाती है। विषयों के प्रति हम आकर्षित होते हैं तो बहुत बड़ा हमको एक रिस्क हम ले रहे हैं कि हमारा व्यक्तित्व में क्या है, जो कि दूसरों का उपकार करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए, भूत हितत्व वह नष्ट हो जाता है। दूसरों के प्रति बहुत बड़ा सबसे अच्छा गुण यह माना जाता है कि हमारे हृदय में दूसरों को भलाई करने की इच्छा रहे, इसे भूत हित। भगवान कहते हैं कि भक्ति में यह सबसे बड़ा, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उसके सत्य नष्ट होता है, भूत हितत्व। भूत हितत्व का अर्थ होता है कि दूसरे प्राणियों की भलाई करना। भगवान भगवद गीता में लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषेः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा जतात्मानः सर्वभूत हिते रतः, यह शब्द यह भगवान भगवद गीता में दो बार कहते हैं, सर्वभूत हिते रतः, सभी प्राणियों के हित में रत रहना, सर्वभूत हिते रतः, यह गुण डेवलप करना चाहिए। हमको हमारे व्यक्तित्व का वहीं पर जांचा जाता है कि हम दूसरों के लिए कितना भलाई करना चाहते हैं, दूसरों के लिए कितना जीना चाहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उसमें सत्य नहीं रहता है। सत्य का अर्थ आचार्य ने कहा कि दूसरों के प्राणियों के हित करने की इच्छा नहीं रहती है। सर्वभूत हिते रता, रत मतलब इंगित रत, 24 घंटे उसके पास दूसरा कुछ काम है, दूसरे प्राणियों का मैं कैसे हित करूं, कैसे उसका उपकार करूं। तो यह नष्ट हो जाता है। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति के हृदय में दूसरों के हित करने की इच्छा है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परहित रत जिनके मन माही तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है जो लगा हुआ है 24 घंटे उसके पास दूसरों का हित करना चाहे, उपकार करना चाहे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो सद्गुण है व्यक्तित्व के, जो सद्गुण है लंबा लिस्ट, इंद्रियां कुपथ में चल जाती, यदि विषयों के प्रति आकर्षण होता है भोग के प्रति, तो इसीलिए प्रहलाद महाराज भगवान से भी वरदान नहीं स्वीकार किए। किए तो इतना ही कि भगवान आप देना ही चाहते हैं, आपका आग्रह है कि मुझे कुछ लेना ही चाहिए तो हमको दे दीजिए कि हमारे, मैं आपसे अभिमत वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में विषयों के प्रति, विषयों का जो बीज है वो अंकुरित ही न हो, मांगने की इच्छा ही नहीं हो, लेने की इच्छा ही, यदि हमारे कहीं, मैं असुर परिवार में मेरा जन्म हुआ है, कहीं मेरे हृदय में कहीं वो बीज छुपा हुआ है, भोगों के प्रति आकर्षण जो है कहीं ना कहीं हमारे हृदय में यदि अस्थित है तो कृपा करके ऐसी वरदान दे दीजिए कि उसमें कभी अंकुरण न हो, वह जम न सके, उत्पन्न न हो। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, विमुच्यति यदा कामन, जेव ही जब व्यक्ति कोई भक्त कामनाओं को, विषयों को विशेष रूप से छोड़ देता है, त्याग देता है, मनसि स्थिता, उसके मन के अंतरतल में जो इच्छाएं हैं, भोग के प्रति आकर्षण है, विषयों के प्रति आकर्षण है, वासना है, यदि उसको छोड़ देता है, तरही एव जेव ही वह भोगों से उपराम हो जाता है, वितृष्ण होता है, वैराग्य होता है, पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते, उसमें सामर्थ्य हो जाता है, उसमें योग्यता हो जाती है भगवत्वाय, भगवत्वाय कल्पते, वो भगवत तत्व, भगवत्व भगवान का जो गुण है, भगवान में जो ऐश्वर्य है उसमें भी वो आ जाता है, वो कल्पते में योग्य होता है। जैसे ही भोगों से उपराम व्यक्ति होता है तब ही वह सक्षम हो जाता है भगवत्व, भगवत्व भगवान के समान उसमें योग्यता हो जाती है, उसमें ऐश्वर्य होता है, उसमें ज्ञान हो जाता है, उसमें वैराग्य क्षमता हो जाती है। तो यह गुण है, इसीलिए भगवान से प्रहलाद महाराज लिए नहीं। कामना यदि कोई त्याग देता है तो उसकी बड़ी शोभा होती है। वैदिक ग्रंथों में आप पढ़े होंगे बहुत से राजाओं के इतिहास होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग थे, जीवन भर भोगों में लगे रहे, उनकी कहीं भी प्रशंसा वैदिक ग्रंथों में नहीं की गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि राज्य को ऊपर छोड़कर, वैभव को छोड़कर जंगल में चढ़ गए भगवान की भक्ति, उन ऋषियों की अथवा उन राजाओं की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की गई जो छोड़ दिए। तो यहाँ पर भगवत्व को प्राप्त हो जाता है, आपके समान में ऐश्वर्य हो जाता है, और भगवान के समान होने का अर्थ नहीं है कि एकदम भगवान के बराबर हो जाता है, लेकिन चूंकि भगवान की सेवा में रहता है, वैकुंठ में रहता है, तो भगवान जो खाते हैं वह सेवक भी वही खाता है, कोई कमी नहीं। भगवान संपत्ति उसकी नहीं हो गई है, लेकिन भगवान के साथ, एक राजा के साथ को रहता, राजा के साथ वैसा वैसे ही कार में साथ साथ चलता है, वैसे ही उसको भोजन करने को मिलता है। एक अभी भक्त हैं बरसाना में, काफी महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, तो इसको छोड़ छाड़ कर आ गए बरसाना में रहते थे, अब महाराष्ट्र रहते तो त्याग वृत्ति से करते थे, वो माधुकरी लेकर खाते, माधुकरी खाते थे। एक दिन हमसे बता रहे थे कि इसके, मैंने पूछा कि पहले क्या करते थे, तो पहले करते थे कि बहुत बड़े नेशनल लेवल के जैसे होते हैं ना जज होते हैं, वकील होते हैं, उनके साथ काम कर रहे थे बॉम्बे में। तो उनका जो राज, जो वकील थे वो ताज होटल में रहते थे, उतना उनकी कमाई होती है कि अफोर्ड कर, तो ये असिस्ट कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थे तो उसी रूम में रहते थे, जो असिस्टेंट थे उनके, उनके सेवा में थे, नौकर चाहेंगे तो उसी में रहते थे। और वो एक बात बताते थे कि वो होटल में तो पेमेंट करना पड़ता था, तो उस समय ये 20-25 वर्ष पहले की बात है, 30 वर्ष पहले की बात है, तो कह रहे थे कि वो जो एक मील जो भोज मिलता था उसका 1500 रुपया दाम होता था। तो उनके पास क्षमता नहीं थी, लेकिन चूंकि वो वकील के साथ थे और उसके साथ, तो वो उसके स्टैंडर्ड के अनुसार तो 1500 रुपये में एक बार, मतलब दो बार खाएंगे तो 3000 रुपये उनको लगता। तो वहाँ थे तो ऐसा, और वही व्यक्ति यहाँ यहाँ रहते थे तो माधुकरी करना पड़ता था, 7 घर से 5 घर से जाकर मांग कर खाते। तो वैसे जो किसी बड़े हम भगवान के हो जाते हैं, तो भगवान के पास जो ऐश्वर्य है, हमारा ऐश्वर्य नहीं हो जाता है, लेकिन जैसा भगवान उपयोग, हम भी उसका उपयोग करते हैं। इसीलिए भगवत्वाय कल्पते, भगवान के समान उसका ऐश्वर्य हो जाता है, भगवान के समान उसका सौंदर्य हो जाता है, भगवान के समान उसका ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की क्षमता हो जाती है, कल्पते में योग्यता आ जाती है। वो चाहे तो वैसा अपुलेंट हो सकता है कि भगवान। तो प्रहलाद महाराज की यह अंतिम एक तरह से उक्ति है, फिर तो नेक्स्ट श्लोक है उसमें भगवान को प्रणाम ही करते हैं, इसके बाद भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें, इस श्लोक में यही बात इन श्लोकों में कहा गया है कि प्रहलाद महाराज ने जितनी की भगवान प्रलोभित कर रहे थे नृसिंह देव, लेकिन फिर भी भगवान से कुछ नहीं लिए, केवल और केवल एक ही वरदान लिए कि हे भगवान आप मुझको अपनी सेवा में लगाए रहते, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, आपकी सेवा में लगा रहूं, बस यही वरदान। लेकिन अंत में भगवान से उन्होंने एक वरदान मांगा है, पहले तो डांट दिए, एक बनिया मैं नहीं हूं वरदान लेने को कहते हैं, एक तरह भगवान को डांट दिया, मैं बनिया नहीं हूं कि मैं सेवा किया हूं कुछ लेने के लिए किया हूं। लेकिन भगवान अब लगभग चलने वाले थे तो प्रहलाद महाराज कहे कि नरसिंह देव मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूं, मांगना चाहता, तो भगवान डांट, अब क्या है, पहले तो हमको डांट रहा था, कहा था कि बनिया नहीं, अब क्यों बड़ी बन, तुमने वरदान मांगा है कि मेरे पिताजी भक्तों को हमको बहुत सताए, अच्छे लोगों को सताए और आपको भी बहुत गाली देते रहे, हमको तो भक्तों को सताए, उनका शुद्धिकरण हो जाना चाहिए, प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, आप उनको क्षमा कर दिए, मेरे पिताजी को क्षमा कर दिए। भगवान कहे कि प्रहलाद अपने पिताजी की तुम बात कहते हो, जिसको मैंने अपने गोद में धारण किया, मैंने अपने हाथों से उसका निधन हुआ है, हमारे गोद में उसने प्राण त्यागा है, तुम्हारे पिता उनकी बात क्या कहते हो, तुम जिस परिवार में जन्म ले लिए हो प्रहलाद, तूने भक्ति किया है, तो इस तुम्हारे भक्ति के प्रभाव से तुम्हारे कुल के 21 पीढ़ियों का उद्धार हो, 21 पीढ़ी, आगे ज्यादा पीढ़ी नहीं था, पीछे ज्यादा नहीं था, भगवान के पुत्र थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे मरीचि के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकशिपु, कश्यप हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के प्रहलाद, उत्तर तो बहुत कम, पहरे का तो कम ही है, इतना पीढ़ी और ब्रह्मा जी को क्या तरने की बात है, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, तो भगवान की भक्ति का यह महत्व है, उसका एक प्रभाव है। प्रहलाद महाराज वरदान नहीं लिए और फिर भगवान एकांतिक भक्त हैं, भगवान के जो एकांतिक भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका स्वभाव होता है वो भगवान से कुछ भी नहीं, लेकिन तो यही बात इसमें कही गई है, एकांतिक भक्त भगवान से कुछ भी लेते नहीं है। प्रहलाद महाराज ने कुछ वरदान नहीं लिया, इतने भगवान की सेवा करने के बदले यही वरदान मांगा कि मेरे मन में मांगने की भोगों के प्रति कोई जो यदि कहीं छुपे हुए कहीं बीज रूप में है तो अंकुरित ना हो, हम उसको ही नष्ट कर दीजिए। ठीक है, हम यहाँ समाप्त करते हैं, कुछ प्रश्न। बोलिए।
हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत सुंदर तरह आपने समझाया। लास्ट में जो आपने बताया कि भगवान ने कहा कि प्रहलाद महाराज मैं आपकी 21 पीढ़ियों का तार दूंगा,
21 तर गए, तार दूंगा नहीं, पुल तर गए, क्या कहा, फ्यूचर टेंस में नहीं, पास्ट टेंस में।
महाराज जी, क्या इसे मातृ कुल के भी पीढ़ी तरते हैं क्या, जो माता जैसे कयादू थी तो उधर भी जाएगा या सिर्फ पितृ कुल को आएगा?
ऊपर नीचे और बाजू में भी जाता है, मामा इत्यादि डायरेक्ट ऊपर नीचे नहीं होते हैं, नाना उठकर।
हरे कृष्ण महाराज, जैसे आपने पिछले श्लोक से कोट किया कि जैसे ही मन में इच्छाएं प्रकट होती है वैसे सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं,
फिर से बताइए। ऐसे ही बोले, ऐसे
हम्म,
देखिए आठवां श्लोक है, आप जो कर इंद्रियाणि मनः प्राणः आत्मा धर्मो धृति मतिः ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। भोगों के जन्म से ही, जन्म से मैंने जीव ही उसके हृदय में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जन्म ले लेती हैं। केवल जन्म ले लिया, अभी बाहर नहीं आया, लेकिन जन्म ले लिया तो इंद्रियाणी उसकी इंद्रियां, हमारी इंद्रियां नष्ट हो जाती है, माने सत्पथ का परित्याग करके कुमार्ग पर चलने लगती हैं। भोग हुआ, इच्छा का जन्म हुआ, तो नेत्र गलत दृश्य देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं, कान से गलत, इंद्रियां, मन, मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। आत्मा मतलब शरीर जो सेवा में लगना चाहिए तो कुछ विश्व में लगता है। धर्म बड़ाश्रम धर्म नष्ट हो जाता है यदि, अथवा भगवद आराधना विषयक जो भक्ति का जो धर्म है वह विचलित होने लगता है। धृति धैर्य द्वंद सहन सहन की जो क्षमता होती है वह नष्ट हो जाती है। मति इंटेलिजेंस दूषित हो जाता है, मति दूषित हो जाती है, और हृदय नष्ट हो जाती है, मतलब लज्जा नहीं लगती है खराब से खराब काम करने पर, निर्लज हो जाता है व्यक्ति। स्त्री तेज उसका नष्ट हो जाता है, स्त्री मतलब धन उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, उसका अपुलेंस नष्ट हो जाता है, और उसमें तेज नहीं रहता है, साहस नहीं रहता है। आठवां श्लोक है यस्य नश्यन्ति जन्मना। जब जन्म ले लिया इच्छा, यदि वो विषय में लग गया तो वो क्या करेगा, उसका तो कायमुत्य न्याय से समझ ले, जेम ही विषयों के प्रति आकर्षण ने जन्म ले लिया हृदय में, भोगों के प्रति कामना उत्पन्न हो गई, विषयों के प्रति ललक उत्पन्न हो गई, ये सभी सद्गुण एक मिनट में नष्ट कर देते। जन्मना यहाँ प्रहलाद में आठवां श्लोक पढ़ लीजिएगा, यस्य नश्यन्ति जन्मना, जिसके जन्म लेने से ये सब जो ना लिस्ट दिखाएगा एकदम एक मिनट में धराशायी कर देते। कम से कम विचार आ रहा है कि हमसे भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसिद्ध है ना, शिक्षाष्टकम का प्रकाशी अनंत नाम अनंत रसे रधाम कृपा करे ओहे भगवान आपनार सर्वशक्ति अर्पण करिला तथी साधिवारे जीवे र कल्याण। ये अनुवाद है बंगला में द्वितीय श्लोक चैतन्य अमार दुर्दैवती नामे ना जन्मिल रति धिक रहु जीवने अमार। भक्तों को रिप्रेजेंट करके भगवान अमार दुर्दैवती, हे भगवान आपके नाम की इतनी महिमा है, आपने अपने नाम में अपनी संपूर्ण शक्तियों को रख दिया है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य अमार दुर्दैवती, मेरा दुर्भाग्य है दुर्दैव है नामे ना जन्मिल रति, नाम के प्रति मेरे हृदय में रति प्रेम नहीं हुआ, धिकर हो जीवन अमार बेकार, मेरा धिकार है मेरा जीवन। भगवान चैतन्य महाप्रभु को तो यह विचार आता है कि हमारा मन विषय में लगा हुआ है, यह बहुत अच्छी बात है। एक भक्त ने कहा है कि मेरा मन जैसे मछली पानी से कभी नहीं अलग होती है, मेरा मन भी एकदम उसके अंदर ही खूब बढ़िया रहता है, यदि विषयों से निकाला जाता है जैसे मछली को पानी से निकाल छटपटाने लगती है, ठीक मेरी दशा भी वही है, विषयों से भोगों से जे ही बाहर गया तब मछली देखते हैं तड़पने लगती है, छटपटाने, तो यही ऐसे भक्त में सारे गुण होते हैं। तृणादपि सुनिश्चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना, तृण से भी अपने को। यह अच्छी बात है कि यह विचार आता है कि एकदम मैं विषयों से फ्री हूँ, कुछ है ही नहीं, मैं जप करता हूँ बढ़िया से, हमारा जप हो रहा है, भजन हो रहा है, एकदम कोई परफेक्ट। यह यदि विचार आता है तो उसके व्यक्ति, उस भक्त के भक्ति पर कुछ शक हो सकता है कि करता है कि नहीं करता है। जिसका मन जितना ही भक्ति में लगता है तो भक्ति का ऐसा भाव, उससे नम्रता आती है। आप लोग जानते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा कुंड के तट पर चैतन्य चरितामृत की रचना किए, तट पर राधा कुंड पर तट एकांत कितने भगवान के भक्त थे, लगे हुए थे। वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भूल से कोई कृष्णदास कविराज कह रहा है सुन लिया, वो बोला नहीं, दूसरा बातचीत करते करते उसके कान में कृष्णदास कविराज शब्द ढुक गया, उसी समय उसके जितने सुकृति थे, शुभ कर्म थे पूर्व को, खत्म हो जाते हैं, पहले का खत्म हो गया। पहले कुछ सुकृत किया होगा, भक्ति किया होगा, तो जिम हमारा नाम अंदर प्रवेश कर गया तो उसका नष्ट हो गया, और भूल से किसी ने उच्चारण कर दिया तो दुनिया के जितने पाप हैं उसके अंदर ढूक गए। तो यह नम्र, अब ऐसा इसे आईजीटीज नहीं लेना चाहिए इस रूप में। अरे बाप रे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई सुन लेगा तो समय सुकृत शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, और उच्चारण कर दिया गए तो जितने पाप हैं आकर ढूक जाते, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो यह नम्रता होती है, भक्त नम्र होते हैं, जितने उनका शुद्ध मन होता है तो उनको लगता है कि हमसे भक्ति तो हो ही नहीं रही है, एकदम नहीं हो रहा है। तो अच्छा है कम से कम वैचारिक लेवल पर यह विचार आना कि अरे हमसे, हमने तो हमारा मन विषय में लगा हुआ, भक्ति में नहीं लगा हुआ, भगवान के चरणों का स्मरण हमसे नहीं हो रहा है। हम भक्त के विषय में कि आपूर्णमान मचलम प्रतिष्ठम, ये विषय आ रहे हैं जा रहे हैं, मनसी स्थितम, उसके मन में बाहर से जैसे कभी गए कहीं बढ़िया से फीस्ट मिल गया, खूब बढ़िया से खा भी लिए, कहीं रुखा सुखा भी भोजन मिल गया, तो उससे भक्त का मन प्रभावित। तो यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मन में विषयों के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाना उससे होता है, और नहीं तो विषय आते हैं, अच्छे भी कपड़े मिल गए, एसी रूम में कभी रहने को मिल गया, कभी गर्मी में भी रहने गया, कोई उससे मन में जो मनसी स्थिति, मन में भोगों के प्रति महत्व बुद्धि जो ही उत्पन्न होती है, चाहे वो भोग आए भी नहीं, महत्व बुद्धि का जन्म जो विषय है। बड़े बड़े भक्त होते हैं तो वो भी तो खाते पीते हैं ना, कपड़ा पहनते हैं ना, ऐसा नहीं कि उन्हें, लेकिन उस विषयों के प्रति महत्व बुद्धि का उत्पन्न हो जाना, महत्व बुद्धि, अच्छा लगना है, अरे बहुत हमको चाहिए, उसके बड़प्पन हो जाए, महत्व बुद्धि का जन्म, नश्यन्ति तस्य नश्यन्ति जन्मना, जो ही हमारे मन में भोगों के प्रति महत्व बुद्धि अच्छे हैं होना चाहिए, उसको कहते, उसे नष्ट हो जाता है। तो ठीक है, ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की।